जरा सोचिए, अगर आज के समय में दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, जिसके पास मतलब असीमित दौलत हो, सत्ता हो और कोई रोक टोक ना हो, और वो अचानक अपना सारा रुतबा छोड़कर एक साधारण मजदूर का जीवन अपना ले, तो दुनिया उसे क्या कहेगी?
शायद ज्यादातर लोग तो उसे पागल ही समझेंगे।
बिल्कुल, क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति तो यही कहती है ना कि जब आपको शक्ति मिलती है तो आप उसका इस्तेमाल अपना प्रभाव बढ़ाने
या महल बनाने या अपने विरोधियों को कुचलने के लिए करते हैं।
एकदम सही, शक्ति का मतलब ही है अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करना। लेकिन आज के हमारे इस गहराई से किए गए विश्लेषण में मैं आपका होस्ट हूं और मेरे साथ हमारी विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो इस पूरी सोच को पलट देता है।
बिल्कुल पलट देता है।
हम डॉक्टर मैथ्यू एस हार्मन के एक व्याख्यान को डिकोड कर रहे हैं जिसका विषय है फिलिपियों का अध्याय 2:5-11 और इस व्याख्यान का नाम है क्राइस्ट द एग्जाम्पलर, यानी मसीह एक आदर्श के रूप में।
और ये कोई साधारण धार्मिक पाठ नहीं है।
राइट।
हमारा मिशन आज केवल किसी ऐतिहासिक लेख को पढ़ना नहीं है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक झटके को समझना है जो इस लेख ने प्राचीन दुनिया को दिया था। ये सिर्फ ये सोचने के बारे में नहीं है कि यीशु इस स्थिति में क्या करते।
हाँ, वो तो बहुत सतही हो जाएगा।
बिल्कुल, बल्कि ये एक गहरा सशक्तिकरण है, ये समझना कि मसीह वास्तव में कौन है और उस समझ के आधार पर जीवन जीने की प्रेरणा पाना।
तो इस लेख की गहराई को समझने के लिए ना, हमें इसका ऐतिहासिक और साहित्यिक संदर्भ देखना बहुत जरूरी है।
कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है।
हाँ, इन आयतों को अक्सर क्राइस्ट हिम या मसीह के गीत के रूप में जाना जाता है।
अब देखो, भले ही हमारे पास इस बात का कोई सीधा ऐतिहासिक सबूत नहीं है कि पहली सदी के शुरुआती ईसाई सच में से किसी वाद्य यंत्र के साथ गाते थे,
जैसे किसी गिटार या वीणा के साथ।
हाँ बिल्कुल, लेकिन इसकी भाषा का स्तर इतना ऊंचा है, मतलब इसकी संरचना इतनी काव्यात्मक है कि ये किसी साधारण गद्य से बहुत अलग महसूस होता है।
तो ये बहुत ही एलिवेटेड प्रोज है।
राइट। और एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसकी रचना का समय। इसे लगभग 60 से 62 ईस्वी के बीच लिखा गया था।
अच्छा, 60 से 62 ईस्वी। ये समय सीमा इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों में कुछ दशकों का अंतर भी बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर देता है।
बहुत ही अहम सवाल है ये। देखो, कई दशकों तक ना कुछ आलोचकों और विचारकों का ये मानना रहा है कि ईसा मसीह को पूरी तरह से ईश्वर मानने का विचार ईसाई धर्म में बहुत बाद में आया।
मतलब उनका मानना था कि ये एक एवोल्यूशन था।
हाँ, उनका तर्क था कि ये विचार पहली सदी के बिल्कुल अंत में या दूसरी सदी में विकसित हुआ, जैसे कि शुरुआती ईसाइयों ने समय के साथ धीरे धीरे एक मिथक या किंवदंती गढ़ लियो,
एक लेजेंड बना दियो। बिल्कुल।
लेकिन ये 60 या 62 ईस्वी का लेख उस पूरे सिद्धांत को पूरी तरह खारिज कर देता है। पौलुस, जिन्होंने इसे लिखा, वे इन आयतों को किसी नए या विवादित विचार के तरह पेश नहीं कर रहे हैं।
वो ऐसे लिख रहे हैं जैसे लोग इसे पहले से जानते हों।
एकदम सही। वे इसे एक ऐसे स्थापित सत्य के रूप में लिख रहे हैं जिसे उस समय का ईसाई समुदाय पहले से ही मानता था। तो ये साबित करता है कि मसीह के ईश्वरीय होने का विश्वास बहुत पहले से मौजूद था।
ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि मसीह के पास असल में क्या था और उस समय का समाज एक ईश्वर से क्या उम्मीद करता था।
राइट।
डॉक्टर हार्मन के नोट्स में एक वाक्यांश का जिक्र है कि मसीह ईश्वर के स्वरूप में थे। अब आज के समय में जब मैं स्वरूप या फॉर्म शब्द सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में किसी चीज की परछाई या किसी चीज का बाहरी आवरण आता है।
हाँ, जो शायद अंदर से असली ना हो।
बिल्कुल। क्या यहाँ स्वरूप का यही मतलब है?
नहीं, ये आधुनिक भाषा के कारण होने वाली एक बहुत ही स्वाभाविक उलझन है। लेकिन प्राचीन ग्रीक भाषा के संदर्भ में, जहाँ ये मूल रूप से लिखा गया था, वहाँ स्वरूप का मतलब किसी चीज का कमतर होना या सिर्फ दिखावा होना बिल्कुल नहीं है।
अच्छा, तो फिर इसका सटीक अर्थ क्या है?
इस संदर्भ में ये बाहरी रूप और आंतरिक वास्तविकता के पूरी तरह से एक समान होने को दर्शाता है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि उनकी आंतरिक ईश्वरीय प्रकृति और उनका बाहरी स्वरूप एक ही था।
मतलब वो केवल ईश्वर जैसे नहीं थे बल्कि वो पूरी तरह से ईश्वर थे।
बिल्कुल, 100%।
यहीं पर मैंने डॉक्टर हार्मन के नोट्स में एक खास ग्रीक शब्द देखा था जिस पर उन्होंने बहुत जोर दिया है, कुछ हिरपाग्मोस जैसा शब्द?
हाँ, हिरपाग्मोस।
मुझे इसका ठीक से मतलब समझ नहीं आया, और अनुवाद के नजरिए से ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
देखो, हिरपाग्मोस सच में इस पूरे लेख की कुंजी है। इसका सबसे सटीक अनुवाद है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज या जिस चीज पर कब्जा करके उसका शोषण किया जाए।
ओहो, मतलब एक तरह की लालची पकड़।
हाँ, ये शब्द किसी चीज को कसकर पकड़ने और उसका फायदा उठाने को दर्शाता है।
जैसे हम अक्सर देखते हैं कि जब किसी को असीमित अधिकार मिल जाते हैं तो वो उसे कसकर पकड़ लेते हैं। अगर हम आज के बड़े नेताओं या मशहूर हस्तियों को देखें
तो ये बात साफ दिखती है।
बिल्कुल, विशेषाधिकार मिलते ही स्वाभाविक रूप से वे उसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं,
अपनी सुविधा के लिए करते हैं।
और पता है, दिलचस्प बात यह है कि ये मानसिकता सिर्फ आज की नहीं है, पहली सदी के ग्रीको रोमन समाज में तो ये और भी ज्यादा गहराई तक बैठी हुई थी।
वो कैसे?
जरा सोचिए, फिलिपी के लोग किस तरह की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। उनका समाज ज्यूस, अपोलो और एरिस जैसे देवी देवताओं की पूजा करता था, और उन देवताओं का स्वभाव तो बहुत ही
स्वार्थी था। वे हमेशा अपनी असीमित शक्तियों का उपयोग अपनी वासनाओं को पूरा करने या अपनी आपसी दुश्मनी निकालने के लिए करते थे।
हाँ, इंसानों को तो वो शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल करते थे।
एकदम सही, ग्रीको रोमन मानसिकता में अगर आप ईश्वर हैं तो आप अपनी शक्ति का पूरा फायदा उठाएंगे, आप कमजोरों का शोषण करेंगे क्योंकि आप कर सकते हैं।
तो इसका मतलब है कि जब पौलुस ने लिखा कि मसीही ने ईश्वर के समान होने को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने या कब्जा करने की चीज नहीं माना, तो ये उस समाज के लिए बहुत बड़ा सांस्कृतिक झटका रहा होगा।
बहुत बड़ा, ये उनकी पूरी ईश्वरीय अवधारणा को ही चुनौती दे रहा था। समाज उम्मीद करता था कि सर्वोच्च अस्तित्व अपनी स्थिति का फायदा उठाएगा, लेकिन मसीह ने अपनी शक्ति को हथियार बनाने से इनकार कर दिया।
तो अगर उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल हावी होने के लिए नहीं किया तो फिर ब्रह्मांड का रचयिता पृथ्वी पर आकर कर क्या रहा था?
यहीं से कहानी पलटती है।
नोट्स में एक और अजीब सा शब्द है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, किनोसिस या स्वयं को खाली करना।
हाँ, किनोसिस बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द।
अब यहां मुझे थोड़ा पुशबैक देने दीजिए। जब हम आम जिंदगी में स्वयं को खाली करने की बात सुनते हैं तो दिमाग में एक ग्लास की छवि बनती है जिसे पलटकर उसका सारा पानी बाहर फेंक दिया गया हो।
राइट, मतलब कुछ खाली हो गया।
हाँ, खाली करने का मतलब ही है कुछ गंवा देना। तो क्या मसीह ने पृथ्वी पर आते समय अपनी ईश्वरीय शक्तियों या गुणों को सच में छोड़ दिया था?
ये ईसाई धर्मशास्त्र के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है, और इसे समझना बेहद जरूरी है। मसीह ने अपनी दिव्यता का कुछ हिस्सा छोड़कर खुद को खाली नहीं किया।
तो फिर कैसे किया?
स्रोत के अनुसार उन्होंने कुछ अपनाकर खुद को खाली किया।
खाली करने के लिए कुछ अपनाना, ये तो तर्क के बिल्कुल उलट लगता है। अगर गिलास पहले से भरा है तो उसमें और कैसे डाला जा सकता है?
और यही तो इस किनोसिस की धर्मशास्त्रीय सुंदरता है। मसीह ने अपने ईश्वरीय स्वरूप को नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने उस ईश्वरीय स्वभाव के साथ साथ एक नया स्वभाव धारण कर लिया।
मानव स्वभाव?
हाँ, हाँ। डॉक्टर हामन बताते हैं कि उन्होंने दास का स्वरूप धारण किया, जिसे ग्रीक में डॉलोस कहा गया है, और मनुष्य की समानता में आए।
मतलब वो किसी भी क्षण ईश्वर होना बंद नहीं हुए?
बिल्कुल नहीं, उन्होंने मानव अनुभव, उसकी सीमाओं और एक दास की स्थिति को स्वेच्छा से अपने ऊपर ले लिया।
क्या बात है, ये एक बहुत ही गहरी बात है। शक्ति के सर्वोच्च शिखर से उतरकर सीधे समाज के सबसे निचले तबके एक दास की स्थिति को चुनना।
हाँ, और यहाँ स्रोत पुराने नियम के दो बहुत महत्वपूर्ण संदर्भों की ओर ध्यान खींचता है। पहला है यशाया 53, जहाँ एक पीड़ित सेवक का जिक्र है।
पीड़ित सेवक
जो दूसरों के लिए दुख उठाता है।
हाँ।
एक ऐसा सेवक जो कोई अपराध न होते हुए भी दूसरों के कल्याण के लिए दुख उठाता है। और दूसरा है उत्पत्ति 1, जहाँ ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने की बात कही थी।
तो मसीह इन दोनों को मिला रहे हैं।
बिल्कुल, मसीह इन दोनों विचारों को एक साथ लाते हैं। वो आदर्श मनुष्य भी हैं और वो पीड़ित सेवक भी। ये सब स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि वो एक ही समय में पूरी तरह से ईश्वर और पूरी तरह से मनुष्य दोनों थे।
लेकिन बात सिर्फ एक दास का स्वरूप लेने तक ही सीमित नहीं रही ना। जब मैं इस हिस्से को पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया।
क्या ख्याल?
आज हम देखते हैं कि लोग बड़ी आसानी से अपने गले में सोने या चांदी का क्रूज पहनते हैं।
हाँ बिल्कुल, ये तो एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है।
राइट? या फिर आस्था का एक बहुत ही शांतिपूर्ण प्रतीक है। लेकिन अगर हम प्राचीन रोम के नजरिए से देखें तो ये आज के समय में अपने गले में इलेक्ट्रिक चेयर का लॉकेट पहनने जैसा है।
ओह, ये बहुत ही भयानक तुलना है, लेकिन एकदम सटीक है।
जरा सोचिए, अगर आज कोई इलेक्ट्रिक चेयर या फांसी के फंदे का चमचमाता हुआ लॉकेट पहने तो लोग उसे कितनी खौफनाक नजरों से देखेंगे। उस समय क्रूज को देखना भी कुछ ऐसा ही भयानक अनुभव रहा होगा।
आपकी ये तुलना उस समय की वास्तविकता को बहुत अच्छे से दर्शाती है। रोमन साम्राज्य में क्रूज पर चढ़ाना इतनी क्रूर और शर्मनाक सजा थी ना कि सभ्य समाज में शिष्ट लोगों की बातचीत में इसका जिक्र करना भी वर्जित था।
मतलब लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते थे।
बिल्कुल नहीं, इसे सजाए मौत से बढ़कर एक सार्वजनिक अपमान के रूप में डिजाइन किया गया था। ये केवल शारीरिक यातना नहीं थी बल्कि इंसान से उसकी पूरी गरिमा छीन लेने का तरीका था।
समाज के सबसे निचले दर्जे के अपराधियों, बागियों और दासों के लिए आरक्षित सजा।
एकदम सही। और अगर हम इसे धर्मशास्त्रीय गहराई से देखें तो ये सिर्फ रोमनों द्वारा दी गई शारीरिक यातना नहीं थी। डॉक्टर हार्मन बताते हैं कि मसीह ने क्रूस पर केवल शारीरिक दर्द नहीं सहा बल्कि मानवता के पापों की पूरी सजा और ईश्वरीय न्याय के भार को भी अपने ऊपर ले लिया।
तो ये विनम्रता का सबसे निचला और अंधकारमय स्तर था।
हाँ, वो अस्तित्व जिसने ब्रह्मांड की रचना की, वो उस चीज पर लटक रहा था जिसे समाज सबसे ज्यादा घृणित मानता था। ये उस किनोसिस या खाली करने की चरम सीमा थी।
और ठीक इसी सबसे निचले बिंदु पर कहानी में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है।
बिल्कुल, टर्निंग पॉइंट।
अब तक ये पूरा लेख इस बात पर केंद्रित था कि मसीह ने क्या किया, उन्होंने कैसे खुद को खाली किया, लेकिन इसके बाद ध्यान अचानक इस बात पर जाता है कि ईश्वर ने क्या किया।
हाँ, ईश्वर ने उन्हें अत्यधिक महान किया
और हर नाम से ऊपर का नाम दिया।
इस हिस्से की संरचना बहुत दिलचस्प है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो अक्सर जब लोग इस कहानी के बारे में सोचते हैं तो वे इसे एक वी पैटर्न के रूप में देखते हैं।
वी पैटर्न मतलब अंग्रेजी के वी अक्षर की तरह।
हाँ, यानी मसीह स्वर्ग की ऊंचाई पर थे, वे नीचे पृथ्वी पर आए, क्रूज पर सबसे निचले बिंदु तक गए यानी वी के निचले हिस्से तक, और फिर वापस स्वर्ग में ठीक उसी ऊंचाई पर चले गए जहां से वे आए थे।
सुनने में तो लॉजिकल लगता है।
लगता है, लेकिन डॉक्टर हार्मन एक बहुत ही सटीक अवलोकन करते हैं कि ये वी पैटर्न नहीं बल्कि एक चेकमार्क पैटर्न है।
चेकमार्क, जैसे हम किसी फॉर्म या सही जवाब पर टिक लगाते हैं।
सही पहचाना। मसीह स्वर्ग की महिमा से नीचे आए, उन्होंने मृत्यु तक विनम्रता दिखाई, लेकिन जब ईश्वर ने उन्हें उठाया तो वे वापस सिर्फ उसी स्तर पर नहीं गए जहां वे पहले थे।
अच्छा, तो वे और ऊपर गए।
हाँ, वे चेकमार्क के दाहिने लंबे हिस्से की तरह और भी ऊंचे स्तर पर गए। अब उन्हें केवल ब्रह्मांड का रचयिता नहीं बल्कि एक ऐसे विजयी राजा के रूप में पूरे ब्रह्मांड का शासक मान लिया गया जिसने मृत्यु, पाप और बुराई को पूरी तरह से हरा दिया है।
क्या बात है। और उन्हें जो महान नाम दिया गया उसकी कहानी भी केवल एक नया शीर्षक या टाइटल मिलने जैसी नहीं है ना। डॉक्टर हार्मन इसे बाइबल के पुराने इतिहास से जोड़ते हैं।
हाँ, इस नाम वाले विषय को समझना सच में पूरे संदेश को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम बाइबल की कहानी की शुरुआत में जाएं, तो उत्पत्ति अध्याय 11 में बेबल की मीनार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है
जहां वो लोग एक बड़ी मीनार बना रहे हैं।
बिल्कुल, वहां इंसान एक साथ आते हैं और कहते हैं चलो हम एक बहुत ऊंची मीनार बनाएं ताकि हमारा नाम महान हो जाए।
मतलब वे अपनी शक्ति के बल पर खुद का नाम बनाना चाहते थे।
हाँ, और इसका परिणाम क्या हुआ? ईश्वर ने उनकी भाषा में भ्रम पैदा कर दिया और उन्हें पूरी पृथ्वी पर बिखेर दिया।
क्योंकि वे भी ग्रीको रोमन देवताओं की तरह अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपनी खुद की महिमा के लिए कर रहे थे।
एकदम सही। और ठीक इसी बिंदु पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। बेबल की घटना के तुरंत बाद उत्पत्ति अध्याय 12 में ईश्वर अब्राहम को बुलाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारा नाम महान करूंगा।
ओ, तो इंसान खुद अपना नाम महान नहीं कर सकता।
यही तो विरोधाभास है। ये ईश्वर का काम है जो वो उन्हें देता है जो विनम्र हैं। और ये थीम पूरी बाइबल में चलती है। नए नियम में आकर पेंटिकॉस्ट के दिन जो भाषाएं बेबल में बिखर गई थीं, वे मसीह के सुसमाचार के माध्यम से एक साथ आने लगती हैं।
और फिर प्रकाशित वाक्य में भी इसका जिक्र है ना?
हाँ, प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में एक बहुत ही भव्य दृश्य है जहां सभी बिखरी हुई भाषाएं, हर राष्ट्र के लोग मसीह के एक महान नाम के नीचे एक साथ आते हैं। ये मानव इतिहास के उस बिबल वाले बिखराव का पूरी तरह से उल्टा होना है।
ये सच में एक अद्भुत संयोजन है। और ये महान नाम हमें इस पाठ के सबसे शक्तिशाली दावे की ओर ले जाता है। यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। डॉक्टर हार्मन ये व्याख्यान में एक जगह थियोलॉजिकल मैथ या धर्मशास्त्रीय गणित का जिक्र है।
हाँ, थियोलॉजिकल मैथ।
उस प्रसिद्ध पंक्ति को लेकर के कि हर घुटना टिकेगा और हर जीभ स्वीकार करेगी, मुझे ये गणित वाला हिस्सा बहुत ही तार्किक लगा।
ये धर्मशास्त्रीय गणित सच में इस पूरे लेख का चरम बिंदु है। देखो, ये पुराने नियम की यशाया 45 पर आधारित है। उस प्राचीन ग्रंथ में ईश्वर यानी याहवे स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि हर घुटना केवल मेरे सामने टिकेगा।
तो आराधना केवल उस एक ईश्वर के लिए आरक्षित थी?
बिल्कुल, किसी और के सामने घुटने टेकना ईश निंदा या ब्लास्फेमी माना जाता था।
तो अगर हम एक गणितीय समीकरण बनाएं?
हाँ बिल्कुल, एक इक्वेशन की तरह।
यशाया के अनुसार हर घुटना टिकेगा, ये क्रिया केवल ईश्वर यानी यहवे के लिए है। अब नए नियम में पॉलुस उसी सटीक भाषा को उठाते हैं और कहते हैं कि हर घुटना मसीह के सामने टिकेगा।
राइट।
तो यदि ए बराबर बी है और सी बराबर बी है, तो इसका स्पष्ट मतलब है कि ए बराबर सी है,
मसीही यावे हैं।
एकदम सही लॉजिक है।
जरा सोचिए, पहली सदी के कट्टर यहूदी के लिए जो केवल एक ईश्वर को मानता हो, ये कहना कि एक सूली पर चढ़ाए गए बड़ाई के सामने हर घुटना टिकेगा, ये कितना चौंकाने वाला दावा रहा होगा। यह एक बहुत ही बड़ा धार्मिक घुचाल था। शुरुआती ईसाइयों के लिए ये गणित एकदम स्पष्ट था, लेकिन डॉक्टर हार्मन यहाँ एक बहुत ही गंभीर बारीकी की ओर भी इशारा करते हैं, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
कौन सी बारीकी?
जब पाठ ये घोषणा करता है कि हर घुटना टिकेगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ब्रह्मांड का हर एक प्राणी खुशी खुशी इसे स्वीकार करेगा।
अच्छा, तो क्या इसका मतलब है कि कुछ लोग विवश होकर घुटने टेकेंगे?
हाँ, जो लोग उनके अनुयायी हैं, जिन्होंने उनके दास के स्वरूप को पहचाना है, वे तो आनंद और उत्सव के साथ घुटने टेकेंगे।
वो कहेंगे कि यही हमारे राजा हैं।
बिल्कुल, लेकिन जिन लोगों ने जीवन भर इस वास्तविकता को नकारा है, जिन्होंने अपनी शक्ति का शोषण किया है, वे भी घुटने टेकेंगे, लेकिन उनका घुटना टेकना खुशी से नहीं होगा, बल्कि अंतिम फैसले की दहशत के कारण होगा। सच्चाई इतनी स्पष्ट होगी कि घुटने टेकना अपरिहार्य होगा।
तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये केवल कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों का विश्लेषण तो नहीं है जिसे बस सुनकर भूल जाया जाए? अगर हम इसे आज की दुनिया से जोड़ें, तो ये हमें नेतृत्व और शक्ति के बारे में क्या सिखाता है?
ये बहुत अहम सवाल है,
क्योंकि प्राचीन रोम के उन देवी देवताओं की तरह ही आज भी लोग अपनी शक्ति और अपने ओहदों का उपयोग केवल अपने लिए करते हैं, अपनी जेबें भरने के लिए या दूसरों को दबाने के लिए।
और ठीक इसी जगह पे फिलिपियों का ये प्राचीन लेख आधुनिक समाज के लिए एक दर्पण बन जाता है। मसीह का ये मॉडल ये सिखाता है कि अगर किसी के पास शक्ति है, तो उसका उपयोग निस्वार्थ सेवा के लिए होना चाहिए।
मतलब खुद को ऊपर उठाने में नहीं, बल्कि
खुद को खाली करके दूसरों को उठाने में है। ये हमारे समाज के उस मंत्र के बिल्कुल विपरीत है जो कहता है हर कीमत पर सफलता पाओ।
ये एक ऐसा नजरिया है जो किसी भी इंसान की जिंदगी को बदल सकता है।
बिल्कुल, और इस पूरी चर्चा के अंत में ना, डॉक्टर हार्मन के व्याख्यान से एक बहुत ही गहरा विचार उभर कर आता है। स्रोत इस बात की ओर इशारा करता है कि आधुनिक जीवन की सुविधाओं ने शायद मानवता को एक तरह से सुन कर दिया है।
सुन कर दिया है? क्या इसका संबंध हमारी रोजमर्रा की सुख सुविधाओं से है?
हाँ, जब सांसारिक जीवन बहुत आरामदायक हो जाता है ना, जब हर सुविधा मौजूद होती है, तो इंसान अक्सर किसी अंतिम न्याय या उस भविष्य की लालसा करना बंद कर देता है।
हम इस आराम में इतने सहज हो जाते हैं,
हम भूल जाते हैं कि एक ऐसा दिन आने वाला है जब हर घुटना टिकेगा। हम उस विनम्रता और उस चेकमार्क के अंतिम हिस्से को भूलने लगते हैं।
ये सचमुच एक ऐसा सवाल है जो गहराई से चुभता है। ये सोचने वाली बात है कि क्या आज की सफलता इंसान को उस गहरी विनम्रता से दूर कर रही है जिसका वादा इस लेख में किया गया है, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्तित्व का खुद को एक दास के रूप में एक क्रूस के दर्जे तक ले जाना, सिर्फ इसलिए ताकि वो दूसरों की सेवा कर सके।
ये इतिहास की कोई आम घटना नहीं है।
बिल्कुल नहीं। तो जब समाज में किसी को शक्ति मिलती है, तो क्या उस चकमाक पैटर्न को याद रखा जाता है? असली ऊंचाई खुद को सिंहासन पर बिठाने में नहीं, बल्कि झुककर दूसरों को उठाने में है। क्या इन सुख सुविधाओं के शोर में इस विनम्रता की शांत आवाज को सुना जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज की इस चर्चा के बाद हम सभी को खुद से पूछना चाहिए।